أعوذ بالله من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. صلى الله عليه وسلم. سلسلے گفتگو اور ہفتہ وحدت کا آخری دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو گفتگو جاری ہے، آپ کی زندگی کے ابتدائی دور جن سختیوں سے گزرے ہیں، مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ نبی کس قدر مشکلات سے دین اسلام کو پھیلائے اور کن مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا. ہم صدر اسلام کی ان قربانیوں کو بھی یاد نہیں کرتے، اصحاب نبی کی ان زحمتوں کو بھی یاد نہیں کرتے جنہوں نے اپنی جانیں نثار کی ہیں. یہ جھوٹا الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے. ہم کیوں اصحاب نبی کو نہیں مانیں گے؟ ہم تو ان کی خاک اور دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا چاہتے ہیں. کیا اسلام کے پہلے شہید جناب یاسر صحابی نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم یاسر کو نہیں مانتے؟ اسلام کی پہلی شہیدہ سمیہ خاتون کو ہم نہیں مانتے، اور ان دونوں کے فرزند عمار یاسر کو ہم نہیں مانتے؟ کہ ہم بلال حبشی کو نہیں مانتے؟ کہ وہ صحابی نبی نہیں ہے؟ کیا عمار یاسر صحابی نبی نہیں ہے؟ کیا ابو ذر غفاری صحابی نبی نہیں ہے جنہیں خود مسلمانوں نے تیسرے دور خلافت میں اس قدر مارا، اس قدر پیٹا کہ انہیں شہر بدر کر دیا گیا؟ وہ صحابی نبی جس کو نبی کریم نے کہا تھا کہ چشم فلک نے روئے زمین پر ابو ذر جیسا سچا نہیں دیکھا، جس کی صداقت کی گواہی نبی کریم نے دی ہے، کیا ہم اس صحابی نبی کو نہیں مانتے جسے دور سوم میں اس قدر کوڑے برسائے گئے کہ انہیں اور ان کے خاندان کے افراد کو ربضہ کے صحراؤں میں لے جا کے چھوڑ دیا گیا، تپتے ہوئے صحراؤں میں جہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، صحراؤں میں بھٹکتا ہوا یہ صحابی پیاس اور غذا کے دانے دانے کو ترستا ہوا صحراؤں میں بھٹکتا رہا، یہاں تک کہ اس کی زوجہ کا انتقال اس کی نگاہوں کے سامنے ہو جاتا ہے، اس کے بیٹے کا انتقال اس کی نگاہوں کے سامنے ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایسی نقاہت طاری ہوتی ہے کہ صحرا کی ریتی کو جمع کر کے اس پر سر رکھ دیتا ہے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ اگر میری جان نکل جائے تو فلاں راستے پہ ٹھہر جانا، وہاں ایک قافلہ آئے گا، उस काफिले से कहना कि एक सहाबी नबी की मैयत यहां रखी हुई है, ए मुसलमानों इसे दफन कर दो। यही हुआ क्या हम बिलाल हबशी को नहीं मानते कि जिन्हें गर्म रेती पर लिटा दिया जाता और उनके छाती पर पत्थर रख दिया जाता था? क्या सुहैब रूमी को नहीं मानते? कौन सा ऐसा जलील उल कद्र सहाबी है, सलमान फारसी, मिकदाद, अम्मार, यासिर, कितने ऐसे नाम हैं जिनको हम मानते हैं? और ये भी एक इल्जाम कि हम अजवाज नबी को नहीं मानते, क्या हम उम्मे सलमा को नहीं मानते, क्या हम मारिया कब्तिया को नहीं मानते, क्या हम ज़ैनब बिन्त जहश को नहीं मानते, क्या हम खदीजतुल कुबरा को नहीं मानते? क्या ये अजवाज नबी नहीं है? क्या नबी की एक ही रौजा थी? असहाबे नबी दो ही तीन थे? क्या ये अजवाज जिनको मानते हैं वो अजवाज नहीं है? जो नसहाब को मानते हैं क्या वो असहाब नहीं है? तो फिर ये इल्जाम किस कदर बेबुनियाद है कि हम सहाबा को नहीं मानते, हम अजवाज को नहीं मानते, सिर्फ अहले बैत को मानते हैं, ये गलत है। असहाब को भी मानते हैं, अजवाज को भी मानते हैं। मक्के की सख्तरीन सख्तियों में जिन्होंने साथ दिया, क्या हम उन्हें नहीं मानते? जनाब अबू तालिब जिन्होंने अपनी पनाहगाह में नबी को रखा, क्या हम उनको नहीं मानते? किस कदर सख्तरीन वो हालात थे। मैंने आपसे अर्ज किया कि जब अबू जहल ने आके कहा कि आप अपने भतीजे से कहिए, जनाब अबू तालिब से कहा कि आप अपने भतीजे से कहिए कि ये आरामिश और सुकून के माशरे में आकर इन्होंने रखना डाल दिया और एक बवाल मचा दिया, नौज़ बिल्ला, और एक हलचल मचा दी, आप इन्हें रोकी, अगर इन्हें सरदारी का शौक है तो हम सरदार बनाने के लिए तैयार हैं, दौलत की जरूरत है तो दौलत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे हमारे माशरे को तहबाला न करें, और जो रविश चल रही है इस आबा अजदाद की रविश को जो जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, इसके खिलाफ न बोलें, हमारे बुतों के खिलाफ न बोलें, हमारी तहजीब के खिलाफ न बोलें, हमारे कल्चर के खिलाफ न बोलें, हमारे आबा अजदाद की जो रविशें हैं उस रविशों के खिलाफ न बोलें। तो जनाब अबू तालिब ने आकर जब यह पैगाम पहुंचा दिया तो नबी करीम ने साफ इनकार कर दिया, चाहे दुनिया की सारी दौलत दे दी जाए, दुनिया का सारा इख्तदार भी दे दिया जाए, तब भी मैं तबलीग इस्लाम से बाज नहीं आऊंगा। यही नहीं, नबी करीम ने कुरान मजीद की आयतों की तलावत करके पूरी तरह से कुफार के इस मुतालबे को रद्द कर दिया, जिसकी बात कुफार मायूस हो गए और उन्होंने ये समझ लिया कि अब ये हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, लिहाजा सख्तियां तेज कर दी गई। इस कदर सख्तियां तेज हो गई कि वो मुसलमान जो कमजोर मुसलमान थे उनको मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसकी मिसालें मैंने अभी आपके सामने दी कि यासिर को शहीद कर दिया और उनकी बीवी सुमैया के छाती पे एक ऐसी बख्शी मारी अबू जहल ने कि वो बेचारी तड़प के मर गई, और इन दोनों का बेटा जनाब अम्मार को भी इसी तरह से अजियतें पहुंचाई जाने लगी। सुहैब रूमी को कत्ल कर दिया गया, बिलाल को अजियतें पहुंचाई गई, सख्तियां बढ़ती चली गई कि जब सख्तियां तेज हो गई तो हुजूर ने इन मुसलमानों से कहा, कि आप लोग कहीं हिजरत कर जाइए, इसलिए कि मैं जहमत बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन आपका तड़पना मुझे बर्दाश्त नहीं है, आप लोग चले जाइए अपनी जान बचाकर किसी दूर दराज इलाके में जाके पनाह ले लीजिए। तो ये कहते हैं कि नबी करीम ने खुद मशवरा दिया कि आप हबश की तरफ रवाना हो जाएं। तो पहला कारवान जो रवाना हुआ वो चंद अफराद पे मुश्तमिल था। ये लोग गए जो 12 मर्द या चंद ख्वातीन पर मुश्तमिल ये कारवान था, ये हबश गया और उसके बाद उनको मुख्तलिफ अफवाहें मिली। उन्हें मालूम हुआ कि मक्के के काफी लोग मुसलमान हो गए हैं या इस किस्म की अफवाहें उन्हें मिली। वो लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद देखा कि नहीं, वैसी शख्सियां बरकरार हैं और कोई तब्दीली नहीं आई है। अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता लोग दामन इस्लाम में आने लगे थे लेकिन सख्तियां खत्म नहीं हुई थी। जब सख्तियां बहुत ज्यादा तेज हो गई तो फिर एक मरतबा एक बड़ा कारवान हबश की तरफ रवाना हुआ जिसमें 80 से ज्यादा आदमी, 83 मर्द और काफी तादाद की ख्वातीन और बच्चे जनाब जाफर इब्न अबी तालिब के साथ फिर दोबारा रवाना हुए। ये एक बड़ी हिजरत थी जो हबशा की तरफ रवाना हुए। उसके बाद की तफसीलात और क्या हबश में हुआ, नजाशी ने किस तरह से सलूक किया और वहां पे क्या वारदात हुई, तमाम बातों को छोड़ते हुए हम तारीख के आगे वाले हिस्से को पढ़ते हुए आगे बढ़े कि वो तो उधर चले गए लेकिन यहां जो सख्तियां बढ़ी थी। सातवां जब साल आया हिजरत का तब तमाम मुशरिकीन ने मिलकर ये कहा कि अब ये बाज आने वाले नहीं हैं और बनी हाशिम के काफी अफराद रसूल अकरम की हिमायत के लिए खड़े हो गए थे जिनमें जनाब हमजा भी थे, जनाब अबू तालिब भी थे। इसको देखते हुए सराने कुफर और सराने खुरैश ने यह तय कर लिया कि सारे कबीले मिलकर यह तय करें कि हम इनका पूरी तरह से बायकाट कर दें। एक सोशल बायकाट था कि जिसमें शादी के लिए मना किया गया था कि एक दूसरे की बेटियों से शादी न करें, खरीदो फरोख्त न करें और मोहम्मद के कत्ल का प्रोग्राम बनाए। ये सब ने मिलकर तय कर लिया था और जौफ़े काबा में ये अहदनामा ले जाकर लटका दिया गया था। यही वो दौर था, यही वो सख्तरीन दौर था कि जिसमें जनाब अबू तालिब ने अपनी घाटी के पास जो मकान था पहाड़ की घाटी में, उस मकान को जो है वो बनी हाशिम के अफराद के लिए दे दिया गया था। तो बनी हाशिम के तमाम अफराद इसमें पनाह लिए थे जिनमें सिर्फ अबू लहब शामिल नहीं था। अबू लहब जबकि बनी हाशिम का फर्द था और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, उसने इनकार कर दिया और वो कुरैश में जा मिला। लेकिन जो बनी हाशिम के जो अफराद थे वो इस पनाहगाह में आकर पनाह लेने लगे जिसे शेबे अबी तालिब कहा जाता है। ये अरसा कुछ चंद महीनों पर नहीं बल्कि 3 साल पर मुश्तमिल था। ये 3 साल के अरसे में हज के दौरान में बस थोड़ा सा वक्फा मिलता था, जैसे कर्फ्यू में ढील दी जाती है वैसे जो है उस दौर में लोग बाहर निकलते थे और उस दौरान में नबी करीम तबलीग किया करते थे। और इस दौरान भी अबू लहब पीछे से पूरी तरह से ताक में रहा करता था। ये हालात गुजरे और 3 साल तक ये सख्तियां बर्दाश्त की गई और जब कभी नजर आते बाजार से खरीदते हुए तो उनको मना कर दिया जाता, दूर इलाकों में जाके खरीदने की कोशिश करते तो वहां भी कोई उन्हें साजो सामान देने के लिए तैयार ना होता। इसी दौरान जनाब खदीजा की दौलत बहुत ज्यादा सर्फ हो गई बल्कि खत्म हो गई। इसी शेबे अबी तालिब की कठिनाइयों में दौलत पूरी खत्म हो गई। उसकी वजह यह हुई कि हो सकता है कि चीजें जब महंगी होकर और बाजार में जब इनके खिलाफ बायकाट था और कोई उन्हें खरीदने से मना कर रहा था तब तब वो चीजें जो सस्ती थी वो निहायत महंगे दाम में मिलने लगी होंगी, जिसकी वजह से जो है इन्हें कम चीज की कीमत ज्यादा दे के खरीदना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इस कदर सख्त हालात पेश आए। और ये जब शेख अबी तालिब से जब बाहर आए हैं, वो तमाम हालात की तरफ में इस मुख्तसर से वक्त में नहीं तफसील में जा सकता कि किस तरह से हालात दुरुस्त हुए। और वो शेख अबी तालिब से जब बाहर आए, आने के चंद रोज गुजरे या चंद महीने के जनाब अबू तालिब रुखसत हो गए, अबू तालिब की वफात वाक़ हो गई। अबू तालिब की वफात वाक़ होने के बाद ये जो अभी आपने वाकयात अस्हाब नबी के सुने हैं, ये उस वक्त शुरू हुआ। जितने भी आपने ये वाकयात सुने हैं तारीख में कि नबी करीम पे कचरा फेंका जाता था, या नबी करीम पे गलाजत फेंकी जाती थी, या पत्थर मारे जाते थे, या जख्मी किया जाता था, जो अजियतें पहुंचाई जाती थी, ये सब उस दौर के वाकयात है कि जब जनाब अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। और आपकी तबलीगात का शोहरा मक्के से बाहर फैलने लगा था, और मक्के से बाहर और खुद हबश से जब खबरें आ रही थी कि वहां पर नजाशी ने इनका इस्तकबाल किया और इनकी तालीमात से मुतासर हो गया, तो ये खबरें मक्के वालों को और चरापा कर रही थी, और मक्के वाले यहाँ और सख्तियों में इन पर इजाफा कर रहे थे, और इनका पैगाम दूसरे शहरों में फैल रहा था। चुनांचे मदीने के लोगों ने आकर नबी करीम से दरख्वास्त की कि आप मदीना तशरीफ ले आइए और मदीना हिजरत कर जाइए। वो सारे तफसीलात आपकी निगाहों के सामने हैं कि किस तरह से हालात बने और नबी किस तरह से मदीना गए, और मदीना जाने के बाद नबी करीम ने अब जो यहाँ पर मुस्बत तबलीगी काम किया है, ये वो दौर था कि जब जूह दर जूह लोग मुसलमान हो रहे थे और कारवान दर कारवान मुसलमान हो रहे थे। औस खजरज के कबीले जो साल हाँ साल से एक दूसरे से दस बगरेबा थे, वो नबी करीम की तबलीगात के नतीजे भी एक दूसरे से बगलगीर हो गए और सब के सब हल्के इस्लाम में आ गए। वो लोग जो नबी के साथ आए थे, मैं हिजरत के तमाम वाकयात को छोड़ते हुए मक्के की मदीने की सरजमीन की बात कर रहा हूँ, जहां आने के बाद हुजूर ने मस्जिद मदीना कायम बनाई और इस तरह से हुकूमत इस्लामी का क़याम अमल में आया। ये हुकूमत इस्लामी के जो पूरी तरह से मजबूत तरीन हुकूमत थी, और यहां से और यहां मुसलमानों में जो आपस में मेल मिलाप कायम हुआ था, जो सदर इस्लाम के मुसलमानों का जज्बा, ये महाजर और अनसार का फ़र्क जो हुजूर ने मिटा दिया था, ये वो हकीकतें थी कि सब कुछ जो हुआ है रिजाने गिरानी, ये सब तौहीद की वजह से हुआ है। और मक्के में के मशके के मुशरिकीन की जो यहाँ जो खराबियाँ थी उनके यहाँ, वो सब के सब उनके शिर्क की वजह से थी। जब तक इस्लाम नहीं आया था, लोगों को इस्लाम की अहमियत नहीं मालूम थी, क्योंकि मुसलमान क्योंकि मुशरिकीन ख्वाब गफलत में पड़े हुए थे, उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनके अंदर कौन सी खराबियाँ हैं, वो अपनी खराबियों की तरफ मुतवज्जे नहीं थे। वो उनको उस वक्त एहसास हुआ जब नबी करीम ने मदीने में इस्लामी तालीमात का निफाज अमल में लाया, तब मक्के वालों की भी आंखें खुलने लगी और मक्के में इनकलाब के आसार नुमाया होने लगे। ये उस वक्त हुआ जब नबी करीम ने इन लोगों को मुशरिकीन को इस कदर बदल दिया था कि वो लोग जो साल हाँ साल से सदियों से एक दूसरे से लड़ रहे थे, वो एक दूसरे पर जान फिदा करने के लिए तैयार हो गए। और ऐसा अजीम तरीन इनकलाब तारीख बशरियत ने नहीं देखा था, तारीख आलम ने ऐसा अजीम तरीन इनकलाब नहीं देखा था, जो हुजूर ने अपने किरदार की वजह से जो तब्दीली लाई थी, वो तब्दीली निहायत ही अहमियत की हामिल थी। क्योंकि वो लोग आज ज़कात दे रहे थे जो कल तक दूसरों का माल लूट कर खाया करते थे, जो अपनी रविश पर पशेमान भी नहीं थे, जो लोग दूसरों का माल लूटने को कानूनी जवाब दे चुके थे, वो लोग आज अपनी मेहनत की कमाई और खून पसीने की कमाई और गाढ़ी कमाई इस्लाम की राह में देने लगे थे। जो लोग छोटी छोटी बात पर साल हाँ साल तक लड़ा करते थे, आज वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी एक दूसरे के लिए देने के लिए तैयार हो गए। ये निहायत ही अजीब तरीन इनकलाब था। ऐसी भाईचारगी कायम हुई, ऐसा मेल मिलाप कायम हुआ, ऐसी तालीमात आम हुई कि लोग दूसरे के माल पर नजर नहीं रखते थे बल्कि अपना माल भी दूसरों के हवाले कर देते थे। ये मदीने की चश्मगीर तरक्की की खबरें जब हबश की तरफ गईं तो वो लोग मुसलमान जो मजबूर मुसलमान जो हबश की तरफ हिजरत करे थे वो भी वापस आने लगे और मस्जिद मदीने में वो पनाह गुजीन जमा हो गए थे। और उसके बाद नबी ने एक एक को एक एक के हवाले किया कि सब लोग एक दूसरे की परवरिश की जिम्मेदारी को कबूल करें। यही वो दौर था कि जहाँ पर नबी करीम ने बूढ़ी ख़वातीन से इज़दवाज किया। ये वो दौर था कि जब लोग एक खातून को पालने के लिए पीछे हट रहे थे, नबी ने ज़्यादा जिम्मेदारी कबूल की। आज जो नबी करीम पर इल्ज़ामात लगाते थे, नबी करीम जब आलम शबाब में मक्के की सरजमीन पर थे तो वहाँ पर उनकी एक ही जोजा थी। मक्के की पूरी जिंदगी में नबी ने दूसरी शादी नहीं की थी, लेकिन मदीने के हालात निहायत सख्त थे। वहां पर जहां लोग हबश से वापस आ चुके थे, जहां मक्के के मुहाजरीन वहां मदीने में आ चुके थे और इस कदर सख्त हालात पैदा हो गए थे और वहां कोई किसी की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, तब नबी ने इन लोगों को पनाह दी कि मर्द तो सो जाएंगे चबूतरे पर लेकिन खातून कैसे जो है चबूतरों पर रहेंगी। ये जो असहाब सुफा कहा जाता है, ये मदीने की मस्जिद में बने हुए चबूतरे थे कि जहाँ पर गरीब मुसलमान सोया करते थे। और यही वो दौर था कि जहाँ मदीने के सहन में मुसलमान सोया करते थे और अतराफ के जो मकानात थे उनके दरवाजे मस्जिद मदीना में खुला करते थे। ये सारे सख्त हालात और इक्तसादी एतबार से नहायत ही मुश्किल तरीन हालात थे। नबी ने पूरा निज़ाम इक्तसाद को तब्दील किया। वहाँ पर यहूदी सूद पर पैसा दिया करते थे, नबी करीम ने मुसलमानों के अंदर इस कदर यूनिटी, इस कदर आपस में इत्तेहाद कायम किया जिसकी नज़ीर तारीख़ बशरियत ने नहीं देखा। इस ऐसा इत्तेहाद और ऐसा इत्तेफाक कायम करके हुकूमत इस्लामी और निज़ाम इलाही कायम किया। यही वो निज़ाम इलाही था जिसको महफूज रखने की जिम्मेदारी बाद के अइमा ने अपने जिम्मे ली। यही वो तरीक़ेकार है, यही वो हुकूमत इस्लामी का निज़ाम है कि जिसको बाकी रखने के लिए आज तक कोशिश की जा रही है कि हमारा सिलसिला इसी जिद्दोजहद में लगा रहा कि ये जो निज़ाम इस्लामी नबी ने कायम किया था, मुख्तलिफ तफसीरें लोग करते हैं करबला के वाकयात की कि जिसकी वजह से करबला जो है वो इन तखय्युलात में असीर होके रह गई कि असल हकीकत क्या थी जिसके लिए इमाम हुसैन ने इतनी अजीम तरीन कुर्बानी पेश की। तो नबी करीम ने अपनी पूरी जिद्दोजहद और पूरी कुर्बानियों के जरिए से जो निज़ाम इस्लामी को कायम किया था, जो माशरा था वजूद में लाया था, ये माशरा, ये निज़ाम हुकूमत, ये निज़ाम इस्लामी के जहाँ पर अदल इंसाफ कायम किया गया था, जहाँ थोड़ी सी भी तकलीफ़ किसी मुसलमान को नहीं पहुँचाई जाती थी, जहाँ हर काम अदल इंसाफ के साथ किया जाता था, जहाँ तकसीम भी होती थी तो अदल इंसाफ के साथ, ये जो निज़ाम अदल इंसाफ था कि जहाँ गुनाहगारों को सज़ा दी जाती थी, जहाँ इज्जतदार लोगों की इज्जत में इजाफा होता था, अगर ये हुकूमत इस्लामी और ये जो निज़ाम मुस्तफ़ा जो कायम हुआ था अगर ये ना होता तो फिर ظالموں کو تمغے دیے جاتے، مظلوموں پہ کوڑے برسائے جاتے، اور نظام عدل و انصاف درہم و برہم ہو جاتا۔ جس معاشرے میں حاکم اسلامی نہ ہو، جہاں قانون قانون اسلامی نہ ہو، وہ معاشرہ جنگلی معاشرہ ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ جو ہے لاقانونیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے وہاں پر بسنے والے لوگ ایک دوسرے کی دست بغربا ہو کر خواہشات نفس کے تابع ہو جاتے ہیں، پھر نہ کوئی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی انصاف ہوتا ہے، نہ کوئی عدالت ہوتی ہے، نہ کوئی سنوائی ہوتی ہے، نہ کوئی عدل قائم ہوتا ہے۔ یہ جو معاشرہ ہے کہ جہاں پر حاکم اسلامی نہ ہو اور نظام اسلامی نہ ہو، تو پھر وہ معاشرہ کیسے ہوگا؟ یہی وہ شدید ترین اختلاف تھا کہ جو نبی کریم کی آنکھ بند ہونے کے بعد میں سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہو گیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ حکومت اسلامی جو نبی نے مدینے میں قائم کی تھی، آیا اس کے لیے قانون کافی ہے یا پھر وہ حاکم کی ضرورت ہے جو قانون کو مجری ہو، عدل و انصاف کے ذریعے سے اس قانون کو اجرا کروائے؟ اگر وہ حاکم اسلامی کا تصور ختم کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ حاکم اسلامی کا تصور ختم کر دیا، کہا کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کوئی عادل حکمراں کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود حکومت قائم کر لیں گے۔ کوئی حاکم کی ضرورت نہیں ہے، تو معاشرہ بغیر حاکم کے کیسے رہ سکتا ہے؟ نہ کل کے معاشرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، آج کے معاشرے میں بھی یہی بات ہے۔ اگر کل ضرورت تھی تو آج کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کل ضرورت تھی آج ضرورت نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کل کے معاشرے کو ضرورت نہ ہو اور آج کے معاشرے کو ضرورت، اور کل کے معاشرے کو ضرورت ہو اور آج کے معاشرے کو ضرورت نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر ہوا کیا اور مسلمانوں نے سمجھوتا کیا کر لیا؟ سمجھوتا یہ کر لیا کہ عادل حکمراں کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے مسلمان رہے ہوں، سب نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، یعنی علی جیسے حاکم کے بغیر بھی ہم رہ سکتے ہیں، حسن مجتبیٰ جیسے حاکم کے بغیر بھی ہم رہ سکتے ہیں، امام حسین کے بغیر بھی ہم رہ سکتے ہیں، کسی کی بھی حکومت میں ہم رہ سکتے ہیں، کوئی بھی حاکم ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی وہ طرز تفکر تھا کہ جس کی وجہ سے مسلم معاشرے میں انحطاط پیدا ہونے لگا، زوال آنے لگا، عدل و انصاف رخصت ہونے لگا۔ تب آپ بتائیے کہ پھر کربلا کیوں قائم ہوئی؟ کربلا کا مقصد کیا تھا؟ کربلا کا مقصد حکومت اسلامی کا تحفظ تھا، وہ جو نبی نے قائم کی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ امام حسین کا مقصد حکومت نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ پھر کیا تھا؟ یعنی امام حسین یزید کو حاکم دیکھنا چاہتے تھے؟ امام حسین یہ چاہتے تھے کہ معاشرہ میں حاکم یزید ہو اور حکومت یزید جیسے حکمران کے ہاتھ میں ہو، نظام اس کے ہاتھ میں ہو، عدل و انصاف ختم ہو جائے، رخصت ہو جائے، دین معاشرے سے رخصت ہو جائے، حکومت اسلامی قوانین رخصت ہو جائے، شریعت رخصت ہو جائے، دین رخصت ہو جائے؟ دین کا قیام بغیر حکومت اسلامی کے کیسے ممکن ہے؟ قصاص و دیات کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بیت المال کی تقسیم کیسے ہوگی؟ عدل قائم کیسے ہوگا؟ انصاف قائم کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین حکومت اسلامی نہیں چاہتے تھے، نظام مصطفیٰ کو رائج کرنا نہیں چاہتے تھے، تو پھر کیا چاہتے تھے؟ یقیناً امام حسین علیہ السلام اقتدار بنام اقتدار نہیں چاہتے تھے، हुकूमत बनाम हुकूमत नहीं चाहते थे, सल्तनत बनाम सल्तनत नहीं चाहते थे। जब उनके बाबा ने नहीं चाही तो वो क्यों चाहेंगे? ख्वाहिशात नफसानी नहीं चाहते थे, इख्तदार और तसल्लुत नहीं चाहते थे, हुक्मरानी नहीं चाहते थे, लेकिन निफाज़ कानून मुस्तफ़ा चाहते थे, निफाज़ कानून इलाही चाहते थे, शरीयत की बालादस्ती चाहते थे। इमाम हुसैन कब ये पसंद कर सकते थे कि जुमे की नमाज चारशंबे को पढ़ाई जाए? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कब ये बर्दाश्त कर सकते थे कि नमाजों की पाबजाई ना हो, रोजों का मजाक उड़ाया जाए, हज का मजाक उड़ाया जाए, शरीयत का मजाक उड़ाया जाए, दीन का मजाक उड़ाया जाए, निजाम इलाही का मजाक उड़ाया जाए? और हुसैन देख, असल मतलब यही था कि सुन्नत नबी बचाई जाए। तभी तो इमाम हुसैन ने कहा असीर वसीरत जद्दी वबी, मैं सुन्नत नबी बचाना चाह रहा हूँ, वो निज़ाम अलवी को बचाना चाह रहा हूँ, वो निज़ाम मुस्तफ़ा को बचाना चाह रहा हूँ। यही वो निज़ाम मुस्तफ़ा है कि जिसका सिलसिला आगे बढ़ता रहा। चौथे इमाम यही चाहते थे, पांचवें इमाम यही चाहते थे, छठे इमाम जिनकी विलादत की आज तारीख है वो भी यही चाहते थे कि हुकूमत इस्लामी कायम हो, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो, कानून कुरान नाफिज़ हो, अल्लाह का निज़ाम नाफिज़ हो, विलायत इलाहिया नाफिज़ हो। इसी विलायत इलाहिया के लिए आज इमाम ज़माना की पूरी कोशिश क्या है? निज़ाम अलवी का क़याम है। इमाम ज़माना क्या चाहते हैं, तमन्नाए इमाम क्या है कि निफाज़ विलायत अलवी। जब निज़ाम विलायत अलवी कायम होगा तो उस वक्त क्या होगा? क्या उस वक्त जुल्म होगा? क्या उस वक्त आलिमों को कोड़े मारे जाएंगे? क्या उस वक्त गरीबों को, गरीबों पर जुल्म होगा? क्या उस वक्त कमजोर तबकात को कुचला जाएगा? उस वक्त एक गरीब को घेर के मारा जाएगा? जो उस वक्त किसी यतीम और बेवा के हुकूक गस्ब किए जाएंगे? किसके इंतजार में हम? हम उस दौर के इंतजार में हैं, उस वक्त के इंतजार में हैं, हम फिर एक मोहम्मद के इंतजार में हैं। मोहम्मद का इंतजार खत्म नहीं हुआ, मुस्तफा के आने से पहले भी मुस्तफा का इंतजार था, फिर मुस्तफा के बाद भी मुस्तफा का इंतजार है। मोहम्मद का इंतजार ईसा अलैहिस्सलाम को था, मूसा अलैहिस्सलाम को था, अंबिया कहते रहे मुबश्शिरन बिरसूलिन याति मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं बशारत देता हूँ ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। अंबिया इंतजार करते थे मोहम्मद का कि जुल्म व सितम व बर्बरियत को खत्म करें। कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा आए तो क्या हुआ, क्या हुआ? उस आने के बाद उन्होंने गरीबों को उनके हुकूक दिलाए, बेबसों को उनके हुकूक दिलाए, यतीमों को उनका हक दिलाया, बेवाओं को उनका हक दिलाया, मजबूर तबके को ऊंचा किया, कमजोरों को ऊपर लाया, मजलूम तबकात की हिमायत की, कमजोरों की हिमायत की, जो बेचारे लाचार थे उनकी हिम्मतों को बढ़ाया। यही काम आने वाले मोहम्मद करेंगे। उनसे इंतजार ये है कि वो नऊज़ बिल्लाह क्या वो जुल्म करेंगे? क्या वो जाहिलों को सर पे चढ़ाएंगे? क्या वो बदकिरदारों को अपने अतराफ में जमा करेंगे? क्या वो नऊज़ बिल्लाह दीन के दुश्मनों को की हिम्मत अफजाई करेंगे? कुरान के मुखालिफीन की हिम्मत अफजाई करेंगे? शरीयत का मजाक उड़ाने वालों की हिम्मत अफजाई करेंगे? नमाजों का मजाक उड़ाने वाले, रोज़ों का मजाक उड़ाने वाले, दीन इलाही का मजाक उड़ाने वाले, उनको इज्जत देंगे मुस्तफा आने वाले मोहम्मद? या फिर कमजोर तबकात की मदद होगी? आने वाले मोहम्मद क्या करेंगे? तो पिछले मोहम्मद ने जो किया था आने वाला मोहम्मद भी वही करेगा। फिर वही निज़ाम इलाही कायम होगा और निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होगा, फिर वही इंसाफ और अदल व इंसाफ कायम होगा। तो हम किसके इंतज़ार में हैं? तो हम मोहम्मद के इंतज़ार में हैं। तो यही इसी इंतजार में और इसी रास्ते में तमाम आइमा अलैहिस्सलाम गुजरे। माशरे को इमाम की जरूरत है। अब गैबत इमाम में फिर यही मसला पेश आया कि गैबत इमाम में भी जब मुसलमान जमा होंगे तो इस मुस्लिम माशरे के लिए फिर किसी हाकिम इस्लामी की जरूरत पड़ेगी। अगर माशरा मुसलमानों का कायम होगा, दीनदारों का कायम होगा, तो फिर दीन के लिए फिर कानून कौन सा होगा? तो कुरान होगा। और उस कानून का इजरा करने के लिए फिर किसी वली फकीह की जरूरत पड़ेगी जो फिक्र का जानने वाला हो, जो कुरान का जानने वाला हो, पढ़ेगी उसकी जरूरत क्या नहीं पड़ेगी। उसको मानने से इनकार लोग क्यों करते हैं? कल लोग अली का इनकार क्यों करते थे? ताकि वो राइज न कर सके कुरान और निजाम मुस्तफ़ा और सुन्नत नबी को। तो आज भी वली फकीह का इनकार इसलिए होता है ताकि वो कानून राइज ना हो और हम अपने नफसानी ख्वाहिशों की इत्तबा करते रहे। कोई भी माशरा चाहे यहाँ का हो या कहीं का भी हो, हर माशरे में हाकिम इस्लामी की जरूरत पड़ती है। एक ऐसे हुक्मरान की जरूरत है। पेश नमाज की जरूरत नहीं है। पेश नमाज तो कोई भी मुसलमान पेश नमाज बन सकता है। कारी निकाह की जरूरत नहीं है। कोई भी मुसलमान कारी निकाह बन सकता है। जरूरत किस शख्स की है? जरूरत एक कायदे इस्लामी की है कि जो मुसलमानों के इंतशार को वहदत में बदल दे। एक ऐसे जिम्मेदार फर्द की जरूरत है जो मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए सोचता रहे और उनको लीड करे और उनको रास्ता दिखाए। एक रहनुमा की जरूरत है, एक राहबर की जरूरत है जो रास्ता दिखाए जब मुस्लिम माशरा मुश्किलात में से दोचार हो जाए और उनके दरमियान में पैदा होने वाले इख्तलाफात को खत्म करे। इख्तलाफात को रोकना जो अंबिया का मकसद था, वही आज के दौर के उलमा का मकसद है। आलिम की का काम, सबसे अहम काम, वहदत जामे का तहफ्फुज़ है, माशरे मुस्लिमीन का तहफ्फुज़ है। इसीलिए कहा कि वो माशरा मुस्लिम माशरा नहीं है जो अपने ज़ाती इख्तलाफात को कुरान से रुजू ना करे और मुस्तफ़ा के निज़ाम से अपने मसाइल को हल ना करे, वो मुसलमान नहीं है। अगर किसी शहर में काजी नहीं है तो समझिए वो माशरा मुस्लिम माशरा नहीं है। हम और आप मुसलमान इसलिए नहीं कहलाते कि हमारे पास कोई काजी नहीं है और हम अपने दाखिली मसाइल को काजी से रुजू नहीं करते। लिहाजा कोई भी मुसलमान नहीं है, यानी मुस्लिम माशरे का फर्द नहीं है, मुस्लिम माशरा नहीं है, क्योंकि कुरान हमारे माशरे पर हाकिम नहीं है और कुरान का कानून हम पर चलता नहीं है और कोई हाकिम इस्लामी हमारे ऊपर नहीं है कि जो हमारे माशरे को की रहनुमाई कर सके। लिहाजा ये गुरुह मुस्लिमीन, ये इज्तिमाई मुस्लिमीन नहीं कहलाता। यही वो अहम तरीन जरूरत है कि जिसके लिए तमाम ये नजरिया विलायत फकीह सिर्फ शियों के पास नहीं है। ये इकबाल भी यही नजरिया पेश करता है। यही नजरिया जो है अल्लामा मौदूदी ने पेश किया, यही नजरिया जमालुद्दीन असदाबादी ने पेश किया, यही नजरिया मोहम्मद अब्दुल ने पेश किया। यही इसी नजरिए की बुनियाद पर इख़वान मुस्लिमीन बनी। इसी नजरियात की बुनियाद के ऊपर ईरान में इनकलाब आया। यही नजरियात थे कि एक दिल हुक्मरान की मुसलमान माशरे को जरूरत है। ये सब तालिमात मुस्तफ़वी है। तो हम दुआ करें इस मुबारक दिन में कि परवरदिगार मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम हो, मुसलमानों को एक ऐसा हाकिम मिले जो तूरा बुरा की पहाड़ियों में गुम ना हो जाए बल्कि मैदानों में जमा रहे और फरार का रास्ता इख्तियार न करे बल्कि मैदानों में टिका रहे। ऐसे हुक्मरान की हमको ज़रूरत है, ऐसे कायदीन की हमको ज़रूरत है, ऐसे मराजे की ज़रूरत है कि जो हर आम मुसलमानों की रहनुमाई करते रहे और उनको रास्ता दिखाते रहे, चाहे वो सियासी रास्ता हो कि इक्तसादी रास्ता। कि हम दुआ करें कि परवरदिगार जहाँ जहाँ पर भी मुसलमानों का खून बह रहा है, परवरदिगार जालिमों को नीस्त तो नाबूद फरमा। और ख़ास तौर पर दुआ इन दिनों में यही होनी चाहिए जो वक्त का तकाजा है कि शहजादी ज़ैनब के रोज़े की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और कोई शख्स इस मसले से गफलत न बढ़ते, वरना वो लोग ज़ालिमों के साथ उन लोगों का हशर होगा जो लोग मज़लूमों की हिमायत नहीं कर रहे हैं। तो अब लिहाजा हम इस दो राह पे ठहरे हुए, लिहाजा हमको परवरदिगार ये तौफीक अता फरमा के मुहाफिज़ीन रोज़े हज़रत ज़ैनब हसन नसरुल्लाह के साथ हमारा हशर नशर हो और हम उनकी हिमायत करने वालों में हमारा शुमार हो और उनके मुखालिफीन में हमारा शुमार ना हो। परवरदिगार मुंजी आलम बशरियत हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताज़ीन फरमा, हमें उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा।